যে আনিল প্রেম ধনা করুণা প্রচুর, যে আনিল প্রেম করুণা প্রচুর, যে আনিল হে প্রভু কোথা গেলা আচার্য প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর, কাহা মোরা স্বরূপ রূপ কাহা সনা সঙ্গে నామాచారి హరిదాస్ ఠాకూర్ కి, అనంత కోటి వైష్ణవ బృందకి, శ్రీ లోకనాథ్ గోస్వామి తిరుభావ తిథి మహామహోత్సవ కి నితాయ్ గౌర్ ప్రేమానందే. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధశ జ్ఞానాంజన శలాకయా చక్షురుమిళితం ఏన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం ఏన భూతలే స్వయం రూపా కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీ గురౌ శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపాం సాగ్రజాతం సహగణా రఘునాథామితం తం సుజీవం సాద్వైతాం సావధూతం పరిజన సహితాం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాం సహగణా లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికాకాంత రాధాకాంత నమస్తే. తప్త కాంచన గౌరంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరి ప్రియే. వాంఛాకల్పిత రూపేశ్చ కృపా సింధువేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసది గౌరభక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ. तो आप सब परिचित है कि आज श्री लोकनाथ गोस्वामी का तिरुभाव तिथि है और ये हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद है आध्यात्मिक जीवन में कि सदैव महान भक्तों का गुणगान करना या उनके गुणगान को श्रवण करना, क्योंकि ये जो महान महान आचार्य हैं कि चैतन्य महाप्रभु या कृष्ण प्रेम के भंडार हैं, सागर हैं, तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु के ये जो नित्य पार्षद हैं उनको नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं गौरांगीर संघी गना नित्य सिद्ध करिमाने. तो से जाए ब्रजेंद्र सुत पाश, जो इस बात को जिसने जान लिया है कि चैतन्य महाप्रभु के जो ये भक्त हैं ये नित्य सिद्ध भक्त हैं, जो भी चैतन्य महाप्रभु की लीला में आए हैं वो हमारे जैसे भौतिक बद्ध जीव नहीं है, ये क्या है मुक्त जीव है और भगवान की नित्य लीला में सदैव ब्रज लीला में और चैतन्य लीला में अनेक प्रकार की लीलाओं में भाग लेते हैं भगवान को आदर या भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए. तो वास्तव में कौन व्यक्ति है जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त नहीं कर पाता. कलयुग में वर्णन आता है नाराधितम कलयुगे तव पाद पद्मा नालोकित कलियुगे तव गौर देहा ना कर्णिता कलियुगे तव तत्व गाथा चैतन्य चंद्र भवता परिवंचितो हम. तो एक महान आचार्य वो अपने ग्रंथ में कहते हैं कि मैं तो चैतन्य चंद्र चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वंचित रह गया, हाँ मुझे उनकी कृपा प्राप्त नहीं हो पाई. क्यों नहीं हो पाई, बल्कि कलयुग में चैतन्य महाप्रभु तो सारे कृपा के भंडार को लेकर अपने साथ आते हैं, लेकिन मैं पामर जीव उनसे वंचित रह गया. तो महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसका वर्णन वो आचार्य कहते हैं नाराधितम कलयुगे तव पाद पद्मा, कि महाप्रभु के चरण कमलों का पूजन मुझे करना चाहिए था. उनकी आराधना करने चाहिए थी चैतन्य महाप्रभु की, वो मैंने नहीं की। नालोकित कलियुगे तब गौर देहम, कि कलयुग में मैंने महाप्रभु का जो गौर देह है, हाँ सुवर्ण के भांति जो चमकीला दिव्य शरीर है, उसको मैंने अपने नेत्रों से उचित सही रूप से देखा नहीं, बारंबार नहीं देखा। ना तरणता कलयुगे तव तत्व गाथा, और महाप्रभु श्री चैतन्य के कार्यकलापों का मैंने वर्णन नहीं किया, या फिर चैतन्य महाप्रभु के दिव्य चरित्र को मैंने नहीं सुना कलयुगा में। इसलिए वो कहते हैं चैतन्य चंद्र भवता परिवंचित हो हम, मैं तो इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से मैं वंचित रह गया। तो भक्तों का गुणगान करना, उसमें चैतन्य महाप्रभु के भक्तों का, उनमें चैतन्य महाप्रभु का गुणगान भी निहित है, उनमें समाया हुआ है। या फिर आप महाप्रभु का गुणगान करते हो तो उसमें उनके भक्तों का गुणगान भरा हुआ है, क्योंकि कोई भी ऐसा कार्यकलाप अलग नहीं है। भगवान के कार्यकलाप भक्तों के कार्यकलापों से अलग नहीं है, अभिन्न है। तो जो व्यक्ति ऐसे महान भक्तों का गुणगान पढ़ता है, सुनता है, वर्णन करता है, तो उसके हृदय के जो अनर्थास है, अनर्थ है, वो तीव्र गति से कम होने लगते हैं। तब जानते हैं कि भगवान कृष्ण जब भी इस जगत में अवतरित होते हैं तो वो अकेले अवतरित नहीं होते, वो अपने साथ अपना धाम, अपने निजी पार्षद, अपने भक्तों को लेके आते हैं। भगवान इस भौतिक भूतल पर आते हैं तो अपने धाम वैकुंठ, गोलोक, नवद्वीप, इन सब धाम को अपने साथ ले आते हैं। और इन धाम को लाकर केवल धाम ही नहीं होता, बल्कि उनके धाम में उनके नित्य भक्त भी होते हैं। तो उसी प्रकार से कृष्ण अवतरित होते हैं ब्रज में, जिसको क्या कहा जाता है, जो भूमि है ब्रजमंडल, क्या कहते हैं ब्रजमंडल। तो भगवान कृष्ण के जो पार्षद हैं वो सारे ब्रजमंडल में ही अवतरित होते हैं। तो वही कृष्ण जब कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, सही कृष्ण नवद्वीपे अवतरित, वही कृष्ण कहा कलयुग में कहा अवतार ग्रहण कर रहे हैं, नवद्वीप में। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु अवतरित होते हैं तो वो भी अपने आने से पहले अपने प्रमुख प्रमुख भक्तों को पहले भेजते हैं। जिस प्रकार से कृष्ण आने से पहले नंदन है, वसुदेव है, देवकी है, बहुत सारे जो गोपिकास हैं, ब्रजवासी हैं, वो पहले प्रकट हुए और बाद में भगवान कृष्ण प्रकट हुए। तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु भी अवतरित होते हैं। तो जैसे ये ब्रज मंडल है, उसी प्रकार से वहां क्या है, गौड़ मंडल, क्या है गौड़ मंडल, जहां चैतन्य महाप्रभु की वो भूमि है। तो जिस प्रकार से यहाँ वृंदावन एक वन है अंदर, जो प्रमुख लीला स्थली है, वैसे ही नवद्वीप में नवद्वीप मंडल है, और नवद्वीप मंडल के अलावा जो बड़ा है उसको गौड़ मंडल कहते हैं। तो ऐसे गौड़ मंडल में चैतन्य महाप्रभु अपने सारे नित्य पार्षदों को अवतरित कराते हैं, उनके भक्त वहां प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसे भक्त जब प्रकट होते हैं, सच्ची माता है, जगन्नाथ मिश्र है, अद्वैत आचार्य है, नित्यानंद प्रभु है, ये सारे बड़े बड़े भक्त पहले प्रकट हो जाते हैं, तो महाप्रभु एक विशेष मिशन को कंप्लीट करने के लिए आते हैं। चैतन्य महाप्रभु का मिशन क्या है, एक मिशन है चारि भाव भक्ति दिमो नाचामो भुवन, मैं क्या करूंगा इस जगत में चार भावों का वितरण करूंगा और सारे भुवन त्रिभुवन को नचाऊंगा, चैतन्य महाप्रभु का ये मिशन है। तो वास्तव में हर एक भक्त का अपने जीवन में मिशन होना चाहिए। मिशन क्या है हमारा, कृष्ण के प्रति तीव्र अनुराग या भगवान के प्रति दिव्य प्रेम को जागृत करना। तो इस भौतिक जगत में हम आते हैं तो कई प्रकार के मिशन में भाग लेते हैं, लेकिन लाइफ का असली मिशन कि परफेक्शन प्राप्त करना है, जीवन की परम सिद्धि, उसको भूल जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का मिशन था कि मैं चार प्रकार के भावों को प्रदान कराऊंगा और सारे संसार को नचाऊंगा, त्रिभुवन को नचाऊंगा। तो क्या क्या देने के लिए आए थे चैतन्य महाप्रभु? चैतन्य महाप्रभु चार प्रकार के भाव देने के लिए आए थे, दश, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। चैतन्य महाप्रभु शांत को हटा देते हैं, शांत जो भाव है वो चैतन्य महाप्रभु की कैटेगरी में नहीं आता, महाप्रभु ने उसको हटा दिया। तो महाप्रभु इन चार प्रकार के भावों का वितरण, इस भावों को प्रदान करने के लिए आए थे। चारे भावो भक्ति देखो नाचा मु भगवान, सारे जगत को मैं नचाऊंगा। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु के साथ उनके जो संगीत है उनमें उनके 24 सन्यासी थे और वो सारे 24 सन्यासी और जितने भी नित्य भक्त थे वो सारे प्रेम के भंडार थे। जिस प्रकार से कृष्ण लीला में कृष्ण के चार प्रकार के मित्र हैं, पांच प्रकार की गोपिकाएं हैं, उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में भी वही सारे जो ब्रज लीला के भक्त हैं वो चैतन्य लीला में, चैतन्य महाप्रभु की लीला में प्रकट होते हैं। बल्कि चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की विशेषता बहुत अधिक विशेषता है। कृष्ण लीला में कृष्ण के जो नित्य भक्त हैं वो ब्रज मंडल के बाहर प्रकट नहीं होते, या फिर अधिकतर जहां भगवान प्रकट हुए उसके इर्द गिर्द ही प्रकट होते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को महाप्रभु ऐसे ऐसे स्थानों में प्रकट कराते हैं जहां, क्योंकि कुछ स्थानों को अशुभ माना जाता है, अशुभ या फिर निकृष्ट माना जाता है। कौन से स्थान? जहां गंगा नहीं बहती, जहां पांडवों ने भ्रमण नहीं किया, या जहां भगवान राम ने जिस स्थान में भ्रमण नहीं किया, वो स्थान अच्छे नहीं माने जाते। तो महाप्रभु ने देखा कि बंगाल में ऐसे कई स्थान हैं जहां ना गंगा बहती है, जहां ना पांडव गए हैं, जहां ना भगवान राम अपने वनवास के समय गए हैं। तो ऐसे ऐसे स्थानों में महाप्रभु ने अपने भक्तों का प्राकट्य करवाया। क्यों? क्योंकि उन स्थानों को भी पवित्र किया जाए, क्योंकि इस पृथ्वी की शोभा एक ही चीज से बढ़ती है। वो क्या है कि जब पृथ्वी के ऊपर भगवान के शुद्ध भक्त चलते हैं तो पृथ्वी को, जब उनके भक्तों का, कृष्ण के भक्तों का स्पर्श पृथ्वी को अपने देह पर होता है तो पुलकित हो जाती है, आनंदित हो जाती है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने चारों दिशाओं में भक्तों को प्रकट कराया और उनमें से एक भक्त थे, क्या नाम था उनका? लोकनाथ गोस्वामी। जब भगवान श्री चैतन्य नवदीप में प्रकट हुए तो चैतन्य महाप्रभु की तुलना सागर से की गई है और उनके जो चारों दिशाओं में जो भक्त प्रकट हुए हैं उनकी तुलना नदियों से की है। हाँ, तो नदी क्या करती है? सागर से मिलती है, सागर उनका पति है। हाँ, नदियों की उपमा पत्नी से की गई है। तो सारे दिशाओं से सारी नदियां सागर को जाकर मिलती हैं। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के जितने भी भक्त प्रकट हुए थे वो सारे फाइनली चैतन्य महाप्रभु के साथ महामिलन करते हैं, नवद्वीप में मिलते हैं या अलग अलग स्थानों में मिलते हैं। तो ऐसे ही एक महान आचार्य वह हैं श्री लोकनाथ गोस्वामी, जिनका रोज स्मरण करते हैं, जिनके महान शिष्य है नरोत्तम दास ठाकुर। ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर का रोज हम गीत का गान करते हैं, कई सारे वैष्णव आचार्य गीत को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। और रोज श्रील प्रभुपाद ने नरोत्तम दास ठाकुर का जो बुक है श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका, उसमें से ये हमें गुरु पूजा दी है, गुरु वंदना, उसमें हम गाते हैं। लोकनाथ लोकेर जीवन, लोकनाथ गोस्वामी सारे जगत के जीवन है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते मेरे तो प्रथम जीवन है, लेकिन साथ ही साथ सारे जगत को जीवित कराने वाले हैं लोकनाथ गोस्वामी या महान आचार्य। तो ऐसे लोकनाथ गोस्वामी का प्राकट्य बंगाल में जशोर यशोहर, अभी तो वो बांग्लादेश में है, वो डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। तलागंडी नाम का एक विलेज था, जिनके माता जी का नाम, उनके माँ का नाम था सीता देवी, पिता का नाम था पद्मनाभ चक्रवर्ती। तो ऐसे लोकनाथ जब छोटे बालक थे तो बड़े सुशील और मृदु सौम्य व्यवहार के थे, सारे जो वैष्णव क्वालिटीज हैं बचपन में इनके अंदर थे, और पढ़ाई आदि में बहुत एक्सपर्ट थे, बहुत बड़े स्कॉलर हो गए बचपन में। लेकिन माता पिता ने देखा कि इतना सब कुछ होने के बाद इस बच्चे के अंदर वैराग्य झलक रहा है, तो इनको डर लगने लगा कि ये थोड़ा बड़ा होकर संन्यास आदि ना ले, साधना बन जाए। सबसे बड़ी चिंता ये रहती है, क्योंकि गृहस्थ जीवन का उद्देश्य क्या है, पुत्रार्थे क्रियते भार्या, पत्नी क्यों चाहिए जीवन में, क्योंकि पुत्र चाहिए, पुत्र क्यों चाहिए, क्योंकि वंश आगे बढ़ेगा, पिंडदान देगा, हमें दुर्गति मिल जाए तो हमारे बच्चे हमें पिंडदान दे सकते, सदगति मिल सकती है, तो ये उद्देश्य है गृहस्थ लाइफ के, पुत्र होना चाहिए। तो लेकिन और हर एक को ये भय लगा रहता है, इसलिए लोग डरते हैं पुत्री नहीं होनी चाहिए, बेटी नहीं होनी चाहिए, पिंडदान कौन देगा, हमें कौन चाहिए, पुत्र चाहिए, या फिर हमारी बचपन में कौन रक्षा करेगा। तो उसी प्रकार से एक प्रकार का भय इनके माता पिता के हृदय में था, और फिर उन्होंने देखा कि इस बालक में वैराग्य आ गया है, और फिर वो सोचने लगे संन्यास ले लेगा, उसके लिए वो प्रार्थना करने लगे भगवान को कि इसको सद्बुद्धि दे दो। असली बुद्धि तो यही है, भगवान देते हैं, क्या है वो, ददामि बुद्धि योगम तम एन मामो वयान्ति, भगवान कहते मैं बुद्धि देता हूँ जिसके द्वारा वो मेरी ओर आ सके। तो लोकनाथ को, लोकनाथ गोस्वामी को तो भगवान ने बचपन में बुद्धि दी थी जिसके द्वारा वो कृष्ण की ओर बढ़ने के लिए तत्पर हो रहे थे, लेकिन माता पिता को दुख लग रहा था। तो ऐसे लोकनाथ ने फिर देखा कि अभी मैं थोड़ा युवा अवस्था को मैंने प्राप्त किया है, और मेरे माता पिता भी मेरे विवाह की चिंता कर रहे हैं। माता पिता की एक के बाद एक चिंता लगी रहती है, एक स्टेप खत्म होता है कि नहीं, पिछले अगले स्टेप का वो चिंता करने लगते हैं। तो इन्होंने देखा कि ये मेरे विवाह के बारे में सोच रहे, घर में बातें कर रहे हैं, और एक युवती को ढूंढ रहे हैं, तो इनको लगा ये उचित नहीं है, अभी मुझे अपना प्लान बनाना पड़ेगा। कल हम डेथ प्लान का योजना सुन रहे थे, तो इन्होंने अभी अपना रनिंग बाहर भागने का प्लान बना रहे थे, और वास्तव में ये रनिंग मोमेंट है, ये रनिंग मोमेंट है, हर एक व्यक्ति भाग रहा है, जो भी डिवोटीज है वो भाग भाग के, महान महान आचार्य जो बने हैं वो सारे भाग के बने हैं, है ना, और आने के बाद भी हमें भागना पड़ता है हरि नाम में, सेवा में, मंगल आरती में, क्लास में, तो ये मोमेंट है, लेकिन रनिंग तीव्र गति से भागना है। तो ऐसे इन्होंने सोचा कि उचित नहीं है, और वैसे देखा जाए हमारी परंपरा में बहुत सारे आचार्यों का वर्णन आता है, जब वो अपने युवा अवस्था में थे तो घर में जब बात होती थी उनके विवाह की, तो वो सोचते थे कि अभी प्लान बनाना है भागने का। रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ भी था ऐसे, लेकिन उनका मैरिज भी हो गया, लेकिन उसके बाद भी वो भाग गए। और उतना ही नहीं, निमाई पंडित चैतन्य महाप्रभु के जो बड़े भ्राता है विश्वरूप, जो अद्वैत आचार्य के पास पढ़ा करते थे, और साथ ही साथ शास्त्रों को हमेशा पढ़ते थे, और हमेशा अपने हाथ में हमेशा पुस्तक रहते थे विश्वरूप के हाथ में। तो जब देखा सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्र ने सोचा कि अभी बेटा बड़ा हो गया है, इसका विश्व विवाह बंधन में डाल देते हैं। तो जैसे ही विश्वरूप ने सोचा कि मुझे बंधन में डालने का प्रयास हो रहा है, तो विश्वरूप ने रात्रि के समय में वो भाग के चले गए। जगन्नाथ मिश्र सच्ची माता बहुत दुखी हो गए। निमाई पंडित ने जगन्नाथ मिश्र सच्ची माता के आंसू पोंछे, और उन्होंने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको संभालूंगा। लेकिन आगे चल के वो भी भाग गए, संन्यास ले लिया निमाई पंडित ने। तो जगन्नाथ मिश्र ने सोचा, दो पुत्र थे विश्वरूप विश्व और विश्वंबर चैतन्य महाप्रभु, तो एक बेटा तो भाग गया संन्यास लेकर। तो फिर उन्होंने अपने पत्नी को कहा, ये जो निमाई है इसको कल से स्कूल में मत भेजो, क्योंकि जब पढ़ेगा बहुत ज्यादा तो अपने बड़े भाई के जैसे हो जाएगा, ये भी संन्यास लेगा, उसका स्कूलिंग बंद कर दिया। डर लग रहा था, इसको कहते हैं कुले शुते भयम, कुल की हानि हो जाना, इसका डर लगा रहता है। ऐसे सात या आठ प्रकार के भय जीवन में वर्णन करते हैं एक आचार्य, उनमें से ये एक है कि व्यक्ति को सदैव भय लगा रहता है कुल की हानि ना हो जाए, कुल का क्षय ना हो जाए, कुल का विनाश ना हो जाए, इसका एक भय लगा रहता है। तो इस प्रकार से जब लोकनाथ गोस्वामी के बारे में चर्चा हो रही थी तो उन्होंने भी प्लान बनाया। हम महाराष्ट्र में एक संत हुए हैं जो आप जानते हैं, किंग महाराष्ट्र के जो शिवाजी थे, किंग शिवाजी के वो गुरु थे रामदास, संत रामदास। तो उनका वर्णन आता है, अचानक मुझे याद आया, जब उनका विवाह होने के लिए खड़ा कर दिया, विवाह मंडप में खड़े थे, तो वहां महाराष्ट्र में एक सॉन्ग गाया जाता है, जैसे प्रेयर्स होती है ना, संस्कृत प्रेयर्स वगैरह, वैसे मराठी लैंग्वेज में एक सॉन्ग गाते हैं, और उसके उसके लाइन ही यही है। जब वे खड़े हो गए, क्योंकि वहां विवाह मंडप में एक और पत्नी को खड़े करते हैं, युवती को, दूसरे और युवक, और बीच में कर्टन होता है और मालाज वगैरह बाद में एक्सचेंज करते हैं, तो वो सब होने से पहले स्टार्टिंग में वो गाया जाता है, उसको कहते हैं शुभ मंगल सावधान। ये दो वर्ड है, ये शुभ चीज होने जा रही है, मंगलमय चीज है, और उसमें एक वर्ड ये होता है सावधान। तो ये जो युवक खड़े थे, इन्होंने जैसे ये वर्ड सुना सावधान, उन्होंने जंप लगाई, उसी क्षण भाग गए विवाह मंडप से, जंगल में गए, आगे वो महान संत बने, उन्होंने कई ग्रंथ आदि लिखे। तो कहने का तात्पर्य है, जब लोकनाथ गोस्वामी को ये पता चला कि नहीं नहीं मेरा जीवन तो कृष्ण की सेवा के लिए है, बाद में सब चीजें देखेंगे, तो उन्होंने प्लान बनाया और वो घर छोड़कर कार्तिक का महीना था, रात्रि के समय में, मध्य रात्रि में वो अपने घर से भाग गए 16 माइल। वो बिना रुके चलने लगे, दौड़ने लगे, उनका गांव बहुत दूर था, और कहां भाग रहे थे, चैतन्य महाप्रभु का जो नवद्वीप है वहां वो भाग रहे थे, नवद्वीप की ओर चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए। तो उनके जो चरण है वो एक रथ के भांति दौड़ रहे थे, केवल उनके सामने चैतन्य महाप्रभु थे, उनको मिलने के लिए वो दौड़े। और क्यों व्यक्ति ये कर पाता है, क्योंकि उसको स्वाभाविक जितना आकर्षण चैतन्य महाप्रभु के लिए होता है, उतना ही सरलता से भौतिक चीजों को वो जिम्मेदारी, भौतिक स्ट्रगल क्या कहते हैं, एंजाइटी आदि को वो छोड़कर भागने लगता है। तो ऐसे वो पहुंचे, लेकिन वो पहुंचे तो नवद्वीप में, उनको पता नहीं था कि महाप्रभु का घर कहाँ है। पहुंचे तो नवद्वीप के गलियों में भ्रमण कर रहे थे, भ्रमण करते करते उन्होंने पूछा कहाँ होंगे निमाय पंडित चैतन्य महाप्रभु। तो किसी को पूछा निमाय पंडित का घर कहाँ है, किसी ने कहा सीधा जाओ, आप जाइए, आगे चलते रहिए। अब ये सोचने लगे मैं पहली बार महाप्रभु को मिलूंगा, मैं अपने बारे में क्या बोलूंगा, क्या इंट्रोडक्शन दूंगा कि मैं कौन हूँ, मैं अपने बारे में क्या बोलूंगा। तो वो पूरे रास्ते में सोचते ही जा रहे थे, अपने हाथों को जोड़ते हुए सोचते हुए जा रहे थे। और यहाँ घर में क्या हुआ था, माता पिता सुबह उठे कि हमारा बालक घर में नहीं है, हम गुम हो गया है, तो वो बहुत रोने लगे, चिल्लाने लगे, और उनको पता चला कि अभी उसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। तो फिर यहाँ जब लोकनाथ गोस्वामी आए चैतन्य महाप्रभु के नजदीक, तो दूर से देखा कि चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्त और गदाधर पंडित के साथ बैठे हुए हैं और कई सारे भक्त हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को देखकर बहुत आनंदित हो जाते हैं और जाकर प्रणाम की मुद्रा में अपने हाथों को जोड़कर उनके सामने खड़े हो जाते हैं, और वो बोल नहीं पाते, अपना परिचय आदि नहीं दे पाते। महाप्रभु लोकनाथ गोस्वामी को देखकर तुरंत खड़े हो जाते हैं और दौड़कर लोकनाथ गोस्वामी का आलिंगन करते। ये दोनों युवा हैं, लोकनाथ गोस्वामी भी अपनी नई युवा अवस्था में हैं, बिल्कुल ही अभी अभी उन्होंने पढ़ाई खत्म की थी। तो ऐसे लोकनाथ गोस्वामी का जब उन्होंने आलिंगन किया, चैतन्य महाप्रभु ने कहने लगे, चैतन्य महाप्रभु लोकनाथ गोस्वामी का आलिंगन करके रोने लगे। उन्होंने कहा लोकनाथ तुम इतने लंबे समय तक कहाँ चले गए थे, मुझे कैसे भूल के इतने लंबे समय तक आप जीवन यापन कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत रो रहे थे, उनका आलिंगन कर रहे थे, तो हम समझ सकते हैं कि महाप्रभु को कितना अधिक प्रेम है अपने भक्तों से। जिस प्रकार से भक्त को भगवान का विरह सहन नहीं होता, उसी प्रकार से भगवान भी सदैव इस लालसा में इंतजार करते हैं अपने भक्तों को मिलने के लिए। इसलिए तो भगवान कभी बैठते नहीं है डिटी फॉर्म में, विग्रह फॉर्म में क्या है, हमेशा खड़े हैं। खड़े क्यों है, वो इंतजार कर रहे हैं, हर जीव के का वो इंतजार कर रहे हैं, उसको मिलना चाहते हैं, आलिंगन करना चाहते हैं। लेकिन हम इतने अधिक इस भौतिक जगत में लिप्त हैं कि हम उनकी ओर जाने के लिए बिल्कुल इच्छुक नहीं है, बिल्कुल ही तत्पर नहीं है। तो ऐसे महाप्रभु उनको मिले और लोकनाथ गोस्वामी भी रोने लगे, चैतन्य महाप्रभु के चरणों को उन्होंने पकड़ा और चैतन्य महाप्रभु ने उनका हाथ पकड़कर अपने साइड में बिठाया, जहां गदाधर थे। तो ये जो गदाधर पंडित और लोकनाथ गोस्वामी आपस में बातें करने लगे, और लोकनाथ गोस्वामी ने कहा, तोमा है ना रत्न आमी नयने देखिला, कि आपके जैसा ये जो रत्न है, सौंदर्यवान रत्न मैं अपने आंखों से देख रहा हूं, और ये आंखें वास्तव में आज सफल हो गई हैं, हे गदाधर आपका दर्शन करके, और किसका, चैतन्य महाप्रभु के गौर वर्ण का दर्शन करके। तो फिर ये दोनों आपस में बहुत लंबे समय तक कृष्ण कथा करते हैं, चर्चा आदि करते हैं, और वर्णन आता है क्योंकि वो कृष्ण प्रेम के सागर में तैर रहे थे, फ्लोट हो रहे थे। फिर लोकनाथ गोस्वामी, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य इन सबको मिले, सबको उन्होंने प्रणाम आदि किया और 5 दिनों तक उन्होंने नवद्वीप में निवास किया। और किस मूड से गए थे कि मैं तो केवल पूर्ण रूपेण चैतन्य महाप्रभु के निजी संग में रहूंगा, उनके नजदीक रहूंगा, उनसे दूर रहना मेरे लिए असंभव है। तो इस भावना को लेकर वो नवद्वीप पहुंचे थे। तो एक दिन फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनका उनको साइड में लिया और पूछा, लोकनाथ आप मुझे बताओ तुम आए कैसे हो। तो लोकनाथ गोस्वामी ने पूरा अपना स्टोरी वर्णन कर दिया, कैसे घर छोड़ा, फिर कैसे वॉक करते हुए आया, कितने दिन लगे, सारा बताया। महाप्रभु सुनते जा रहे थे, हंस रहे थे, सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि हे चैतन्य देव, मेरे लिए आप ही एकमात्र क्या हो, धन हो, संपदा हो या ट्रेजर हो। आपके अलावा ये जगत में कोई भी चीज है वो मेरे लिए तुच्छ है, तो इसलिए इस जगत तुच्छ मुझे प्रतीत हो रहा है, जिसके कारण मुझे यह अनुभव हो रहा है कि आप ही एकमात्र मेरे धन हैं। तो उन्होंने कहा कि रूपे छुटी बामे जहां नाहे जाने, कृपा रज्जु गले दिया आने लेना ठाने। उन्होंने कहा मैं नहीं जानता कि मैं कैसे छूट गया हूं इस भौतिक जंजाल से, लेकिन एक चीज मैं अवश्य जानता हूं कि आपका ये जो कृपा रज्जु है, प्रेम का जो कृपा की जो रस्सी है, वो आपने मेरे गले में डाली थी और दूर था मैं, वो रस्सी इतनी लंबी, उस रस्सी को आपने गले में मेरे बांध के क्या किया, यहां खींच लिया आपकी कृपा रूपी रज्जु से। इस प्रकार से बहुत अंतरंग भक्त है चैतन्य महाप्रभु के लोकनाथ गोस्वामी। चैतन्य महाप्रभु ने दो चीजें जो किसी के पास आज तक रिवील नहीं की थी, वो केवल लोकनाथ गोस्वामी के पास रिवील की उन्होंने। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु लोकनाथ गोस्वामी को कहते हैं, करे दरे कहे ओए सुन लोकनाथ, मने जय दुख उठे कहे बका हाथ। एक दिन उनका हाथ पकड़ा चैतन्य महाप्रभु ने और कहा कि हे लोकनाथ, मेरे हृदय में बहुत दुख है और इस दुख को किसको बताने के लिए मुझे कोई उचित व्यक्ति नहीं मिल रहा है, मेरे हृदय में दुख को जाकर मैं किससे बताऊं, लेकिन मुझे आज तुम मेरे पास हो, मेरे सामने हो, और मैं ये सोचता हूं कि ये जो मेरे हृदय का दुख है वो आप ही समझ सकते हो, इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, मैं कौन हूँ, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण हूँ। महाप्रभु अपना वर्णन करने लगे हैं, पहली बार किसको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं वही श्याम सुंदर कृष्ण हूँ जो त्रिभंग ललित रूप में ब्रज के वनों में ब्रज की बालाओं के साथ, ब्रज के निवासियों के साथ हजारों प्रकार की लीलाओं में सदैव मग्न रहता था। और मैं इस जगत में एक विशेष कारण के लिए आया हूं, और आप सारे जो भक्त हैं वो मुझे सहयोग देने के लिए प्रकट हो रहे हैं, और जब तक आप मुझे सहयोग नहीं देंगे तब तक ये कार्य पूरा नहीं होगा। और मैं देख रहा हूं कि ये कार्य शुरुआत ही नहीं हो रही है इस कार्य की, इसलिए मैं बहुत अधिक दुखी हूं, इवन मैं नवदीप में निवास करने के बावजूद भी। तो महाप्रभु उनको कहने लगे, मोर बनेरा अनुभव कही बाबा काय, मोरे देखी केह निंदे केह हसी जाए। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग मेरे प्रति अपराध आदि कर रहे हैं, कुछ लोग मुझे देख के निंदा करते हैं, कुछ मुझे देखकर हंसते हैं, तो ये दुख हो रहा है मुझे। और दूसरी चीज क्या है, वो कहते हैं राधिका भाव लैया आइनु गौड़ देश, आस्वादन नहे दुख अशेष विशेष। मैंने तो राधिका का भाव धारण किया है और गौड़ देश में अवतरित हुआ हूं। आस्वादन नहे दुख, और ये सब करने के बाद भी राधा रानी की भावना का मैं आस्वादन नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं मुझे बहुत दुख हो रहा है, ऐसा दुख जो कभी शेष नहीं होने वाला। हमारा लागिया राधा जाति कुल धान, सकल छाड़िया आत्मा कैल समर्पण। तो कृष्ण बहुत विस्तार से लोकनाथ गोस्वामी को श्रीमती राधा रानी की महिमा का वर्णन करते हैं। तो लोकनाथ गोस्वामी के जीवन में तो बहुत चर्चाएं हैं, तो ऐसे लोकनाथ गोस्वामी को वो कहते हैं, हमारा लागिया राधा जाति कुल धान, कि मेरे लिए श्रीमती राधिका जो अपना जाति है, कुल है, धन है, सकल छाड़िया आत्म कैल समर्पण, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है और आत्मसमर्पण किया है मेरे प्रति। महाप्रभु कई चीजें बोलते हैं, मैं पढ़ता हूँ प्यारों को। मोर प्राणनाथ कैल अमर विछरे, मोर रूप मोर गुण दीवानी सीखे रे। और उन्होंने मुझे केवल अपना प्राणनाथ स्वीकार किया है, और सदैव दिन दिन भर और रात्रि, दिन में भी और रात्रि में भी सदैव मेरे गुणों को गाती रहती है। मृणाल तंतुर प्राय हैल तार तनो, वसन मलिन बाउलेर प्राय जैनो। कि उसका शरीर मेरे विरह में, मेरी चिंता में कमल की जो डंडल होती है उसके समान छोटा हो गया है, और उसके वस्त्र भी मलिन हो गए हैं। हाँ, उसको इसका भान नहीं है, वो पागल के भांति ब्रज के वनों में भ्रमण कर रही है। अन्य पुरुषेर मुख ना देखे नयने, सुनये आमार गुण कहे वदने। वो केवल एक ही कार्य, दो कार्य करती है ब्रज में। क्या करती है? एक तो अन्य पुरुषेर मुख ना देखे नयने, दूसरे पुरुष के मुख को देखने के लिए उसको कोई लालसा नहीं है, दूसरे और पुरुष का मुख अपने आंखों से नहीं देखती, और सदैव सुनये आमार गुण, सदैव मेरे बारे में सुनती रहती है, और कहे वदने, सदैव मेरे बारे में बोलती रहती है। मोर अंग संग लागे सदाई व्याकुल, कुंजे कुंजे बले गता यमुना रकुल। और मेरे संग प्राप्ति के लिए सदैव यमुना के तट पर वनों में या कुंजों में भ्रमण करती हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु लोकनाथ गोस्वामी को अपने हृदय की जो वेदना है उसको प्रकट कर रहे हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि लोकनाथ गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के बहुत प्रिय भक्त हैं। और वो फिर चैतन्य महाप्रभु उसी को आगे कहते हैं कि जब भी श्रीमती राधिका मुझे देखती हैं उस समय वो दिव्य सुख की अनुभूति करती हैं, और उनको एक क्षण मेरे मुझसे न मिलने के कारण सौ सौ युगों के समान उसको महसूस होता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एत प्रीति छाड़ी करे एत अतिजार, शास्त्रे कहिते नारे है न गुणतार। कि उसके अंदर इतना अधिक प्रेम मेरे लिए है कि जो शास्त्र है वो भी उसका वर्णन करने के लिए असमर्थ है। तो इस प्रकार से लोकनाथ गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं, श्रीमती राधिका का जीवन मैं हूं और मेरे लिए जीवन कौन है, श्रीमती राधिका है। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु लोकनाथ गोस्वामी को वर्णन करते हैं और वो कहते हैं कि मैं सदैव श्रीमती राधिका के प्रीति से और उनके दिव्य गुणों से क्या हो गया, वो बंध गया और सदैव उनके प्रति मैं ऋणी हूं, मैं उनके ऋण को कभी अदा नहीं कर सकता। और फिर दूसरा दुख वो बोलने लगे, दूसरा दुख क्या है, उन्होंने कहा एक ब्राह्मण था मेरे प्रति, वो सदैव अपराध करता है और वो मेरी निंदा करता है और वो कभी भी कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करता है और व्यास देव की शिक्षाओं को स्वीकारता नहीं है। आपने आपको बहुत बड़ा गर्वित और ज्ञानवान, सारे शास्त्रों को ज्ञाता के रूप में सबके सामने प्रस्तुत करता है, कृष्ण की शरण को छोड़कर देवताओं की शरण ग्रहण करता है। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कृष्ण का ना भजे गुरु दासी के भजे, तो कहते कि वो कृष्ण का भजन छोड़कर अपने घर में जो सेविका है उसका भजन करने में लगा रहता है। दिन में तो पूजा का दिखावा करेगा और रात्रि में क्या करेगा, शराब पिएगा। तो महाप्रभु ने कहा ऐसा कलयुग के ब्राह्मण है, महाप्रभु ने कहा ब्राह्मण ये भूल गए हैं कि वो भगवान के मुख से निकले हुए हैं। तो महाप्रभु कहते कि मुझे इनकी भी चिंता है जो मेरा अनादर कर रहे हैं, मेरी निंदा कर रहे हैं। और वास्तव में नवदीप में चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित एक दिन एक जगह बैठे थे और वह बैठे बैठे क्या कर रहे थे, गोपी 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 ऐसे उच्चारण कर रहे थे। तो एक ब्राह्मण युवक उनके पास आया, कहते ये क्या हो गया निमाय को, पागल हो गया है, कलयुग में तो हरिनाम लेना चाहिए, कृष्ण का नाम लेना चाहिए, ये गोपी 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 नाम लेकर क्या होगा। महाप्रभु ने जैसे सुना डंडा दिया, उसके पीछे भागे, दौड़ने लगे पिटाई करने के लिए। हाँ, वो फिर भाग के चला गया दूसरे स्टूडेंट के ग्रुप के साथ, सारे ब्राह्मण कम्युनिटी के स्टूडेंट हैं। फिर उन सब ने सोचा कि ये निमाय कि हम पाठ पढ़ाएंगे, आपने आपको समझता क्या है। हाँ, तो महाप्रभु उसको चैतन्य चरितामृत में कहा गया है पढ़ो या अधम, ये अधम स्टूडेंट है। तो महाप्रभु फिर ऐसे लोगों के उद्धार के लिए महाप्रभु कहते कि मैं और एक कार्य करूंगा, क्या सत्य ब्राह्मण लाके संन्यास करिब ग्रह छाड़े देशे देशे भ्रमण करिब। महाप्रभु ने लोकनाथ गोस्वामी को पहली चीज तो कही कि मैं वही कृष्ण हूँ, श्रीमती राधिका के भाव को धारण किया हूँ, उनके प्रेम का आस्वादन करने के लिए आया हूँ, किसी को नहीं बताया आज तक नवदीप में। और दूसरा क्या है कि मैं इन सारे मूर्खों के लिए, इनका उद्धार आदि करने के लिए क्या करूंगा, संन्यास ग्रहण करूंगा और ग्रह को त्याग दूंगा, देश वनों वनों में भ्रमण करूंगा, देशों में देशे देशे अलग अलग कंट्रीज में जाऊंगा, महाप्रभु ने कहा। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु लोकनाथ गोस्वामी को कहते हैं कि ये तो सारे बाह्य कारण है जो मैंने आपको बताए हैं, कि ये तो बाह्य कारण है कि मैं संन्यास ग्रहण करूंगा, लेकिन मेरा असली प्रयोजन क्या है, मैं क्या करूंगा, श्रीमती राधा रानी के भावना को धारण करके उनके जो मेरे प्रति प्रेम है उसको स्वीकार करूंगा। और वास्तव में चैतन्य महाप्रभु ने कहा महाप्रभु कहते संन्यास लेना ये मेरा एक दुखा दिखावा है, एक छल है, लेकिन दूसरा इसके अंदर एक कारण छुपा हुआ है, वो क्या है, क्यों मैं सैफ्रन वस्त्र क्यों धारण करना चाहता हूँ। तो लोकनाथ गोस्वामी को कहते हैं कि जिस प्रकार से मोर अंगेर वरण, मेरा शरीर का जो वर्ण है, कृष्ण के शरीर का वर्ण कैसे है, नील वर्ण है ना, नील श्यामल घन मूर्ति कृष्ण को कहा जाता है। तो ऐसे महाप्रभु कहते हैं ओरिजिनली मेरे अंग का वर्ण जो है नील वर्ण है, वसन राधा का है, उसी कलर के वस्त्र कौन पहनती है, श्रीमती राधिका पहनती है, नील नील वस्त्र साड़ी आदि पहनती है, यही लाके नीले वस्त्र सुख आती पाए, इसलिए तो उनको नीले वस्त्र पहनने में ज्यादा सुख महसूस होता है। आमारा विच्छेद परे आरु नवसान आपना के निज दासी माने अनुक्षान, उन्होंने कहा लेकिन जब से मेरे साथ विरह होता है मैं दूर चला जाता हूं, विच्छेद होता है, जिसके द्वारा वो फिर क्या करती है, अरुण वसन सैफ्रन वस्त्र वो धारण करती है और हमेशा इस मोड में लगे रहती है कि मैं कृष्ण की सेविका हूं। अमर लविया राधा आदि सखी गवान विरह व्याकुल हैया तेजी लजीवान। मेरे लिए श्रीमती राधिका आदि जो सखिया हैं वो विरह से व्याकुल होकर अपने शरीर का भी त्याग करने के लिए तत्पर हैं। आमिह तेजी व प्राण ताहर लागिया से दशा है वे तुम्हें सुने बैठा किया। उन्होंने लोकनाथ गोस्वामी को कहा अभी मुझे वो मौका आया है, मैं भी अपना प्राण त्याग दूंगा हाँ उन सबके लिए, तो मैं क्या करूंगा, धरिव तहार कांति परिव अरुण वसन, जो श्रीमती राधा रानी के शरीर का वर्ण है वो मैं स्वीकार करूंगा और मैं भी सैफ्रन वस्त्र धारण करूंगा। हैव तहार दास आनंदितमान, मैं श्रीमती राधा रानी का दास हाँ बल्कि उनकी महिमा का गान करूंगा। इस प्रकार से वास्तव में चैतन्य महाप्रभु बहुत अधिक गुणगान करते हैं लोकनाथ गोस्वामी को श्रीमती राधा रानी की महिमा का और स्थापित करते हैं कि मैं वास्तव में हाँ उनका जो मेरे लिए प्रीति है, उनका मेरे लिए जो सेवा की भावना है उसका वर्णन शास्त्र नहीं कर सकते। कृष्ण कहते हैं, महाप्रभु कहते हैं, मैं सौ जन्म भी ले लूं इस पृथ्वी में और हर जन्म केवल राधा रानी की महिमा को बोलते रहूं तो भी मैं पूर्ण रूपे न वर्णन नहीं कर सकता। उनका ये जो प्रीति है कृष्ण के लिए और उनकी जो सेवा की भावना है, तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु उनको बताते हैं और वो कहते हैं जगत भाषा एवं तारेश कीर्ति, मैं सारे जगत को आप्लावित कर दूंगा राधा रानी की महिमा का वर्णन करके। और इसी कारण से हाँ वो क्या करते हैं, महाप्रभु कहते हैं कि मैं रोऊंगा नाचूंगा संकीर्तन में गाऊंगा, तो ऐसे भावेश में आकर चैतन्य महाप्रभु रो पड़ते हैं हाँ श्रीमती राधा रानी का नाम लेकर, वृंदावन का नाम लेकर, और लोकनाथ गोस्वामी उनको आलिंगन उनको अपने गोद में लेते हैं। और फिर महाप्रभु जब अपनी मूर्छित अवस्था से बाहर आते तो लोकनाथ गोस्वामी को एक आज्ञा देते हैं, वो कहते कि हे लोकनाथ तुम क्या करो हाँ सुबह होते ही वृंदावन चले जाओ, अभी पांच दिन हुए नहीं आए हैं, जिनके लिए घर छोड़ा पांचवे दिन आपको घर से भाग भगा रहे हैं। और वो कहते कि अभी बंगाल से कहां चले जाओ, वृंदावन जाकर जीवन भर वहां रहो। उनको शौक लगा, किनको शौक लगा, लोकनाथ गोस्वामी को हाँ, कि जिनके लिए मैंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया, जिस व्यक्ति के लिए और जिसका संग लाभ करने के लिए कि मैं इनके संग में जीवन भर रहूंगा, वही हाँ जो मेरे इष्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, मुझे अपने संग से दूर भेज रहे हैं। तो महाप्रभु ने कहा कि तुम क्या करो, ये जो वृंदावन है ये कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है। कृष्ण कहते कि ये वृंदावन मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तो महाप्रभु ने कहा कि हे देखो लोकनाथ, वृंदावन अभी अरण्य बन चुका है, जंगल बन गया है, कोई लीला स्थलिया नहीं रही है, अप्रकट हो गया है, तो तुम वहां चले जाओ। और दो उनको आज्ञा दी, एक तो कहा कि तुम एकांत भजन करो, कृष्ण का भजन में लग जाओ तीन रात, और दूसरा क्या करो, कृष्ण की ब्रज के जो लीला स्थलिया हैं उनको ढूंढ निकालो। तो ये दो आज्ञाएं उनको दी थी, तो लेकिन इनका हृदय इसको स्वीकार नहीं कर रहा था। लोकनाथ गोस्वामी को लग रहा था कि ये महाप्रभु मुझे पनिशमेंट दे रहे हैं हाँ दंड दे रहे हैं, मुझे दूर धकेल रहे हैं अपने से हाँ। तो वास्तव में ये कृष्ण की विशेष सेवा है हाँ, वृंदावन के लिए जो चैतन्य महाप्रभु ने उनको दी थी हाँ, क्योंकि जीव गोस्वामी कहते हैं वृंदावन परित्यज पादम एकम न गच्छति, कि कृष्ण को वृंदावन इतना प्रिय है कि एक कदम भी वो वृंदावन से बाहर नहीं लेते डालते। कृष्ण में भी मथुरा आए थे हाँ, वो अपने वसुदेव विस्तार से मथुरा आए थे, लेकिन आचार्य ने कहते कृष्ण हमेशा हाँ ब्रजवासियों के सामने गुप्त रूप में हाँ निवास करते हैं और उनके विरह और उनकी भावना को देखते हैं। तो ऐसे वृंदावन को वृंदावन कृष्ण को बहुत अधिक प्रिय है। और ऐसे नहीं कि लोकनाथ गोस्वामी नहीं जानते थे, लोकनाथ गोस्वामी ये सब चीजें जानते थे, वो जानते थे कि वृंदावन में कोई भी एक तरु लता है, पुष्प है, फल है, वृक्ष है, वहां का प्राणी है, वो इतने शक्तिशाली है, आप करोड़ों जन्म तक साधन भजन करो तो भी जो चीज प्राप्त नहीं कर सकते वो वृंदावन की ये जो तरु है, वहां की जो मिट्टी है, वहां के वृक्ष आदि है, वो आपको दे सकते हैं कृष्ण प्रेम इतनी सरलता से। वो जानते थे इतना वृंदावन महिमा से भरा है, लेकिन वो एक चीज को त्यागने के लिए हिचकिचाहट हो रही थी, कौन सी चीज? महाप्रभु का संग। लेकिन हम देखते हैं हाँ, दो प्रकार की गुरु की सेवा है, एक वपु सेवा और दूसरा क्या है? वाणी सेवा। अब यहाँ लोकनाथ गोस्वामी उनके वपु या शारीरिक संग लाभ के लिए वहां रहना चाहते थे हाँ, लेकिन महाप्रभु को किसमें ज्यादा आनंद आ सकता है? जब वो उनकी वाणी का पालन करेंगे, जब वो जाएंगे उनकी वाणी का पालन करने के लिए हम वृंदावन चले जाएंगे और वहां जो उनको सेवा प्रदान की है हम उस सेवा को हम वो करेंगे। तो ऐसे जो लोकनाथ गोस्वामी थे वो बहुत एक प्रकार से दुखी हो रहे थे हाँ, उनको लग रहा था कि मैं सारे जगत को त्यागने के लिए तैयार हूँ लेकिन महाप्रभु का संग त्याग हाँ कर नहीं सकता। तो वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता इसी में ही थी कि लोकनाथ गोस्वामी वृंदावन चले जाए तो वास्तव तो इसलिए है शास्त्र कहते कि शुद्ध प्रेम या प्रगाढ़ प्रेम का मतलब क्या है कि जो हमारे इष्ट हैं उनकी प्रसन्नता के लिए उनको त्याग करना, जाना उनकी सेवा करने के लिए दूर जाना ये बहुत बड़ा शुद्ध प्रेम या परम आसक्ति का लक्षण है। फिर इसी को चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी का भाव वो कहते हैं। श्रीमती राधा रानी एक स्थान में कहती हैं, मोरे दिया दुख तार पाए जनी सो सही दुख मोर सुख भर जा, कि मोरे दिया दुख तार पाए जनी सो, मुझे दुख देकर उनको यदि सुख मिल रहा है तो वो मैं करने के लिए क्या हूँ तैयार। ये है परफेक्शन और इसी को हम रोज गाते हैं और भक्तिराम ठाकुर ने इसी को कहा है, जा है कृष्ण इच्छा ताही करेब निज इच्छा मते किछु ना चिंतिव। शरणागति के साम में कहते हैं कि जा है कृष्ण इच्छा, कृष्ण की जो इच्छा है उसी को मैं करूंगा और अपनी वो इच्छाओं को त्याग करने के लिए तत्पर रहूंगा। ये प्रेम का एक लक्षण है, शरणागति का एक लक्षण है। तो यहाँ राधा रानी का जो श्लोक है शिक्षा स्कंध में, आश्लिष्य वा पादरता पिनस्तुवा अदर्शनां परमहतां करोतु वा यथा तथा वा विददातु लंपटो मत्प्राणनाथस्तु सयेवनाथ। आप मुझे चाहे आलिंगन करें या फिर दूर ढकेल दे लेकिन फिर भी आप मेरे प्राणनाथ रहेंगे हाँ, तो उसके लिए बहुत बड़ी योग्यता की आवश्यकता है। तो ऐसे लोकनाथ गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु से यह आज्ञा प्राप्त करते हैं तो वो निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं हाँ, जब ये निकल रहे थे हाँ, तो वहां और एक दूसरे महान भक्त खड़े थे हाँ, जिनका नाम था भूगर्भ गोस्वामी। ये दोनों हमेशा साथ रहते थे, पक्के मित्र थे। तो महाप्रभु ने एक को आज्ञा दिया कि तुम वृंदावन जाओ, तो भूगर्भ कहते कि महाप्रभु मैं भी इनके साथ जाना चाहता हूँ, इनके बिना मैं नहीं रह सकता। महाप्रभु कहते तुम्हें अपने अथॉरिटी से जाकर पूछना पड़ेगा, तुम्हारे अथॉरिटी कौन है? तुम्हारे गुरु है, वो कौन है? गदाधर पंडित। गदाधर पंडित से पूछो जाकर। तब गदाधर पंडित आए, गदाधर पंडित ने महाप्रभु को पूछा, देखो ये भूगर्भ लोकनाथ गोस्वामी के साथ लोकनाथ के साथ जाना चाहता है वृंदावन। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ इनको आप भेज सकते हैं। तो ये दोनों हाँ चले आते हैं हाँ वृंदावन। तो लोकनाथ गोस्वामी कृष्ण लीला में मंजुलाली मंजरी है, भूगर्भ गोस्वामी गांधी मुखी मंजरी है। ये दोनों मंजरिया कृष्ण सेवा में सदैव निवास करती हैं। और ये जो लोकनाथ गोस्वामी ये दोनों आए, ब्रज बिल्कुल अरण्य हो चुका था। पहले गोस्वामी हैं, महाप्रभु ने सबसे पहले किसी को अपने आने से पहले किसी को भेजा वृंदावन में हाँ, वो थे लोकनाथ गोस्वामी, जिन्होंने सर्वाधिक वृंदावन के लीला स्थलियों को खोज निकाला है। और किसी गोस्वामी या और किसी आचार्य ने इतने वनों को या लीला स्थलियों को ढूंढा नहीं जितना लोकनाथ गोस्वामी ने ढूंढा है। जब ये आए और दिन रात वृंदा देवी को प्रार्थना करने लगे कि हे वृंदा महारानी, वृंदा देवी आप ही वृंदावन को प्रकट करती हो, आप ही वृंदावन को सजाती हो, आप ही वृंदावन की शोभा बढ़ाती हो, आप क्या करो मुझे वृंदावन को रिवील करो। तो फिर कुछ समय के बाद वो एक उमराव जो गांव है वहां किशोरी कुंड के किनारे बैठकर भजन कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब वो भजन कर रहे थे तो अचानक उनके हृदय में ये इच्छा का उदय हुआ कि मेरे कोई विग्रह होने चाहिए जिनकी मैं पूजा कर सकूं। तो उसी समय भगवान राधा विनोद कहां थे, वहां किशोरी कुंड के जल में पड़े हुए थे, पानी के अंदर, कुंड के अंदर। भगवान ने देखा जब करते समय इच्छा हो रही है मेरे सेवा की, डीडी वर्ष, तो भगवान वैसे लंबे समय तक कुंड के अंदर थे। तो वहां स्वयं भगवान ने एक व्यक्ति का रूप, ब्रजवासी का रूप धारण किया बूढ़े, और खुद ही अपना विग्रह लेके आए कि देखो मैं बूढ़ा हो गया, ये मेरे विग्रह है, मैं अभी इनकी पूजा अर्चना नहीं कर सकता, हे लोकनाथ तुम इनकी सेवा आदि करो। तो लोकनाथ को समय को बहुत आनंद होता है, वो राधा विनोद को वो ले लेते हैं, उनकी सेवा करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। और जब भगवान जैसे उनके पास आए हाथ में, उन्होंने छाती से लगाया, रोने लगे, और फिर देखा कि जो जिस व्यक्ति ने विग्रह दिए हैं वो कहाँ चले गए, देखा कि वो व्यक्ति अप्रकट हो गया, गायब हो गया है। तो भगवान विग्रह फिर बोलने लगते, लोकनाथ इसको कोई और लेके नहीं आया, मैं खुद ही लेके आया हूँ तुम्हारे पास। फिर वो कहते कि देखो बहुत लंबे समय से मैं उस जल के अंदर था, आप मुझे कुछ फल फूल कुछ खिलाओ, बहुत भूख लगी है। तो लोकनाथ गोस्वामी ने पुष्प इकट्ठा किए, पुष्प की शैया आदि बिछाई जिसके ऊपर उनको बिठाया, कुछ फल फ्रूट से इकट्ठा किया, उनको भोग आदि लगाया, और सदैव उनकी सेवा करते थे। बल्कि उनकी सेवा, उनकी जो सेवा निष्ठा थी और उनका जो वैराग्य था, उनको देखकर ब्रजवासी बहुत आकृष्ट हो जाते थे। ब्रजवासी ने कहा कि आप तो हमेशा वृक्ष के नीचे रहते हैं, हम आपके लिए कुटिया बना देते हैं, क्योंकि आपके पास तो अभी ये विग्रह भी है, राधा विनोद भी है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं वनचारी हूँ, मतलब वन में रहने वाला वृक्ष के नीचे, तो इनको भी मेरे जैसे ही होना चाहिए। इन्होंने सोचना चाहिए था मेरे पास आने से पहले कि ये फैसिलिटी मुझे नहीं मिलने वाली, उनके पास जाऊंगा तो उतना ही मिलेगा जो उनके पास है। तो उन्होंने कहा मुझे कुटिया आदि की आवश्यकता नहीं है, लोकनाथ गोस्वामी ने कोई कुटिया नहीं बनाई। भक्ति रत्नाकर में नरहरि चक्रवर्ती कहते हैं कि जब बहुत अधिक धूप बारिश वर्षा आदि होती थी, फिर भी लोकनाथ गोस्वामी वृक्ष के नीचे रहते थे, और इतना बारिश होता था, इतना घनघोर वर्षा होते थे कि वो क्या करते थे, खुद बारिश में पेड़ के नीचे खड़े रहते थे, हमेशा भीग जाते थे रात्रि में भी दिन में भी। लेकिन अपने जो विनोदी लाल हैं, राधा विनोद हैं, विनोदी लाल ये विग्रह अभी जयपुर में है, मूल विग्रह उनके प्रतिबिंब विग्रह यहाँ है वृंदावन में है, गोकुलानंद मंदिर में, राधा रमन के मंदिर के साथ में है। तो ऐसे विनोदी लाल को क्या करते थे, एक जो वृक्ष है उसके अंदर एक छेद किया हुआ था, छोटे से विग्रह इतने से हैं वो विनोदी लाल विग्रह, राधा रमन जितनी साइज थी छोटे से, उनको वहां रखते थे छेद के अंदर, और खुद बाहर सर्दी गर्मी वर्षा आदि को सहन करते थे, इस प्रकार से उनका सेवा आदि करते थे। तो ऐसे उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने देखा कि अभी इनकी सेवा तो कंटिन्यूस होनी चाहिए, तो फिर वो सोचते हैं कि मुझे बारंबार, क्योंकि मुझे तो और भी एक सेवा चैतन्य महाप्रभु ने दी है, वृंदावन के वनों में भ्रमण करना और लीला स्थलियों को खोज निकालना, तो वो मैं कैसे कर पाऊंगा, इनके साथ ही बैठा रहूंगा तो सेवा नहीं होगी। तो फिर उन्होंने क्या किया, एक नया आइडिया यूज किया, उन्होंने एक छोली बनाई इधर, और उसके अंदर उनको रखा। तो वहां वो वर्णन करते हैं, उस छोली में उनको बिठा दिया, जिस प्रकार से कोई जिस प्रकार से कंठी माला सदैव हम कंठ में धारण करते, कंठ के नजदीक है वो, निकलती नहीं बाहर, उसी प्रकार से ये झोली सदैव कंठ में टंगी रहती थी और भगवान हमेशा कंठ में यहाँ हुआ करते थे और उनको लेकर वो भ्रमण करते थे और भगवान सामने देखते थे हाँ। और लोकनाथ गोस्वामी को ऑर्डर देते थे कि लोकनाथ देखो देखो यहाँ मैंने रास लीला किए थे, यहाँ वो पुण्य है जहां मैं गोपियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था, यहाँ वो वन है। तो इस प्रकार से लोकनाथ गोस्वामी ने 330 या 333 से अधिक वनों को ढूंढा ब्रज में। एक ग्रंथ आता है ब्रज भक्ति विलास, ब्रज भक्ति विलास, उसमें इन सब का डिटेल वर्णन किया है कि लोकनाथ गोस्वामी ने कितने ऐसे वनों को ढूंढा, कितने ऐसे लीला स्थलों को ढूंढा, बहुत बड़ा योगदान है ब्रज के पुनरुद्धार में लोकनाथ गोस्वामी का। तो ऐसे भगवान स्वयं वो, यहाँ तो हम सोचते परमात्मा गाइड करेंगे, लेकिन यह परमात्मा सीधा सामने झोली में बैठ के वो सीधा बता रहे हैं ये 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 लीला स्थल। यार मतलब मैंने यहाँ लीला, अभी कोई स्पेकुलेशन का कुछ चांस ही नहीं है, तो सीधा भगवान ही बोल रहे हैं, अधिकृत शब्द हैं उनके, सफल इससे बढ़कर शब्द प्रमाण क्या हो सकता है। स्वयं भगवान ही बोलते अपने लीला स्थलों के बारे में, हाँ यहाँ ये था, यहाँ वो किया था। तो ऐसे गोकुलानंद के द्वारा उन्होंने सारे लीला स्थलों को ढूंढा और इतने अनेक विरक्त थे। हाँ तो एक दिन जब उन्होंने अपने गोकुलानंद को ड्रेसिंग किया और ड्रेसिंग करके बाहर आ गए, सामने उनको देख रहे थे, अभी उनके पास छोटा सा कुटिया कुछ तो था, किचन भी था अभी उनके पास, अभी मंदिर के लिए स्थान भी था, अभी काफी महीने हो गए थे ब्रज में कुछ मंदिरों का निर्माण हुआ था, तो अभी वो सेटल्ड हो गए थे। फिर लोकनाथ गोस्वामी ने एक दिन अपने गोकुलानंद का विनोदीलाल का ड्रेसिंग किया और आके उनको देखने लगे और लंबे समय तक आंखें भर भर के उनके सौंदर्य को देखते जा रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं और वो भूल गए कि अभी भोग लगाने का टाइम हो रहा है, कुकिंग करना है उनके लिए, वो भूल गए। तो विनोदीलाल देख रहे हैं कि अभी इनको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, और उनका जो सेवक है वो किचन में था, वो इंतजार कर रहा था कि लोकनाथ गोस्वामी आएंगे किचन में और तब हम कुकिंग शुरू करेंगे। भगवान ने देखा ये मेरे सौंदर्य को निहारने में देखने में इतना निमग्न हो गया है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो भगवान स्वयं लोकनाथ गोस्वामी बन के किचन में चले गए, किचन में गए कुकिंग करने लगे, बहुत सारे व्यंजन उन्होंने बनाए और वो जो सेवक था वो कुछ कार्य के लिए थोड़ा बाहर आया किचन से, बाहर आके देखते अरे दूसरा एक लोकनाथ वहां बैठा है, कहां बैठा है, वहां तो गोकुलानंद विनोदीलाल को देख रहा है, नयन भरिया, नयन को भर भर के देख रहा है, और यहाँ फिर यहाँ आता है कि यहाँ भी तो किचन में है, तो कंफ्यूजन बढ़ गया, कुछ तो ट्रबल है। तो वो गए, जो लोकनाथ विनोदीलाल को देख रहे थे उनके कंधे में जाकर उनको हिलाया, आप यहाँ है आप वहां है। तो विनोदीलाल के लिए वो लोकनाथ आते किचन में, देखते कि वो दूसरे लोग गायब हो गए हैं, सारा वैरायटीज ऑफ जो फूड है व्यंजन है वो सारे बने हुए थे। फिर लोकनाथ गोस्वामी समझ जाते हैं हाँ कि ये गोकुलानंद ने विनोदीलाल बहुत वो है, मेरी बहुत अधिक उत्साहित है अपने भक्तों की सेवा करने के लिए और वो मुझे बाधाएं पहुंचाना चाह रहे थे। इस प्रकार से लोकनाथ गोस्वामी का लाइफ है, बहुत लंबी चर्चा है लोकनाथ गोस्वामी का वर्णन, बहुत लंबे समय तक किया जा सकता है। ऐसे उनके एक महान शिष्य हुए, उन्होंने एक ही शिष्य को स्वीकार किया जीवन में, जैसे प्रभुपाद ने कहा एक चंद्र तमो हन्ति न च तारा सहस्रशः, एक चंद्र सारे अंधकार को दूर कर सकता है, हजारों तारों की क्या आवश्यकता है। तो प्रभुपाद ने कहा मैं फॉलोवर से इकट्ठा करने के चक्कर में नहीं हूँ, मुझे सिंसियर फॉलोवर चाहिए, चंद्रमा के समान तमो या अंधकार को दूर कर सके। तो वैसे ही इनके भी एक ही शिष्य थे, बल्कि लोकनाथ गोस्वामी जैसे नरोत्तम दास ठाकुर का प्राकट्य हुआ, हाँ तब लोकनाथ गोस्वामी ब्रज में थे तो उनको कहा कि एक महान भक्त मेरा आएगा वृंदावन में जिसका नाम नरोत्तम है, तुम उनको शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेना। ये पहले भगवान ने बोल दिया था महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु ने। तो नरोत्तम दास ठाकुर आते हैं और ये भी कहा था कि वो भक्त ऐसे होगा कि जब वो कीर्तन करेगा, मेरी महिमा का गान करेगा, तो पत्थर और लकड़ आदि पिघलने लगेंगे। इतना पावरफुल है नरोत्तम दास। तुम उनको शिष्य के रूप में स्वीकारो। राजा का पुत्र है राजा कृष्णचंद्र दत्त। तो फिर उन्होंने जब ये नरोत्तम दास ठाकुर आए वृंदावन में, उन्होंने उनको अप्रोच किया कि आप मुझे ना शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। कहते मैं योग्य नहीं हूँ, हाँ क्वालिफाइड नहीं हूँ गुरु बनने का। आप बहुत सारे और भी गोस्वामी हैं, जीव गोस्वामी हैं और गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं, वहाँ रघुनाथ गोस्वामी हैं, बहुत सारे। मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, मुझमें योग्यता नहीं है। अब इन सबको अपने गुरु के रूप में स्वीकारो। लेकिन लोकनाथ नरोत्तम दास ठाकुर फिक्स थे कि नहीं, मैं आपके आपके द्वारा ही मुझे शिक्षा और दीक्षा ग्रहण करनी है। तो फिर नरोत्तम दास ठाकुर को वो मना कर रहे थे। फिर हम जानते हैं नरोत्तम दास ठाकुर ने एक साल तक हमें विशेष सेवा की। फिर फाइनली वो एग्री हो जाते हैं और उनको दीक्षा देते हैं। पहले तो एक साल के लिए चेक करते हैं, वो कहते हैं कि आपको एक साल तक जप करना चाहिए। रोज 64 राउंड जप करते थे नरोत्तम दास ठाकुर। एक साल जब हुआ, ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सब एक साल तक देखा लोकनाथ गोस्वामी ने। और फिर हम बाद में उनको दीक्षा प्रदान की नरोत्तम दास ठाकुर को। तो ऐसे लोकनाथ गोस्वामी के महान शिष्य थे नरोत्तम दास ठाकुर। और वो शिष्य फिर जीव गोस्वामी के पास शिक्षा के लिए उन्होंने भेजा कि आप इनसे सीखो, जीव गोस्वामी से सीखो। और फिर वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बंगाल में उनको भेजा गया। तो बल्कि वो चाहते कि एक ही शिष्य है वो मेरी सेवा करने के लिए यहाँ रहे। और जब चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लिखा जा रहा था तो कृष्णदास कविराज सब भक्तों के पास गए कि आप मुझे कृपा करो, तो आशीर्वाद मांगने गए। तो लोकनाथ गोस्वामी के पास गए और भूगर्भ गोस्वामी को बहुत आनंद था महाप्रभु के बारे में सुनने में। तो लोकनाथ गोस्वामी ने कहा कि मैं आप बहुत अच्छा है, महाप्रभु का गुणगान वर्णन करने जा रहे हो, लेकिन उस ग्रंथ में मेरे बारे में कुछ मत लिखो, मेरा नाम उस ग्रंथ में नहीं आना चाहिए। बल्कि हम वो पहले भक्त हैं जो ब्रज में आया और महाप्रभु के बारे में सारा ये सब वर्णन चैतन्य चरितामृत में हमें पढ़ने को मिलता है, जो आज हम सुन रहे थे महाप्रभु के साथ उनका कन्वर्सेशन। तो लेकिन उतने विनम्रत है कि उन्होंने कहा कि मेरा नाम बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हाँ, तो लोकनाथ गोस्वामी अपने बारे में कभी वर्णन नहीं करते थे, गुणगान में बोलते नहीं थे। तो इस प्रकार से हम चैतन्य महाप्रभु के बहुत प्रिय पार्षद थे। और जैसे मैंने कहा कि कृष्ण लीला में वो मंजुलाली मंजरी हैं, हम जिनकी सेवा श्रीमती राधा रानी का अंग विलेपन का मतलब है कि हम शरीर को सजाना, उसमें मार्क्स वगैरह बनाना। हाँ, राधा रानी मार्ग बनाते ना अलग अलग जगहों में, और उनको कंगन पहनाना रोज, एक इनका सेवा है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम लोकनाथ गोस्वामी का। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के ऐसे प्रिय पार्षदों को हमें सुनना चाहिए, उनका गुणगान करते रहना चाहिए। तो हम सरलता से ये अनुभूति करेंगे कि महाप्रभु भक्तगण क्या है, इस जगत के नहीं है, वो नित्य सिद्ध है। हरे कृष्णा। लोकनाथ गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की श्री प्रभुपाद की। किसी को कोई प्रश्न है, समीक्षा है? उन्होंने बदलाव में शरीर त्यागा हम भजन करते हुए। उस समय केवल जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी अप्रकट हो गए थे, रघुनाथ दास गोस्वामी भी अप्रकट हो गए थे, जीव गोस्वामी थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी थे, और इनकी आयु 100 से अधिक हो गई थी। तब उन्होंने अपने शरीर को त्यागा वृंदावन में। तो उनकी समाधि राधा गोकुलानंद मंदिर जो है, जिसमें गोकुलानंद विग्रह है, विनोदी लाल है, हम जिस टेम्पल में ऐसे कई विग्रह हैं, वहाँ उनकी समाधि है। तो वृंदावन जाते तो उनका समाधि का दर्शन कर सकते। हाँ, क्योंकि जब मुस्लिमों के आक्रमण के कारण ब्रज के जो सारे मूल विग्रह हैं केवल राधा रमन को छोड़कर हम सारे इधर उधर भेजेंगे, मेनली वृंदावन भेजेंगे, जयपुर, उसमें राधा गोविंद है, मदन मोहन है, और गोपीनाथ है, राधा विनोदी लाल है, राधा दामोदर है, ये पांच मंदिर वहां आपको दर्शन के लिए मिलेंगे। तो राधा माधव है जयदेव गोस्वामी की, वहाँ जयपुर में वृंदावन कानन है, वहाँ वो है, ये विग्रह है। तो फिर ये जो विग्रह गए तो उन्हीं विग्रहों के प्रतिभूत विग्रह वैसे विग्रह बनाए गए और उनकी वृंदावन टेम्पल में स्थापना की। तो उन विग्रह में और प्रतिभूत विग्रह में कोई अंतर नहीं है, हम शास्त्र कहते हैं। तो लेकिन इसलिए गुप्त वृंदावन है, जयपुर क्या है, गुप्त वृंदावन है। कभी कभी जयपुर जाना चाहिए इन इन विग्रहों का दर्शन करने के लिए और इन महान वैष्णव का स्मरण करके एक अविशेष आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। जयपुर नजदीक है, 4-5 घंटे का जर्नी है, गए सुबह शाम को वापस। हाँ तो वो आगे कभी चर्चा करूँगा, वो नेड़े नहीं है हमें जानना भी बहुत डिस्कशन में आप क्या हो गया है, 5 प्रकार की 4 प्रकार की अलग अलग सेवा के अनुसार है, इंटीमेसी उनका जो सेवा का जो क्लोजनेस है श्रीमती राधिका के संग में कृष्ण के संग में, उसको अलग प्राण सखा नर्म सखा ऐसे कुछ कुछ सखा है, जो कुछ बिल्कुल कुछ सखा है जो केवल गवे चराने तक ही सीमित है, कुछ सखा है जो इन लीलाओं के में भी भाग लेते हैं, कुछ सखा है और इंटीमेट है, 30 प्रकार के अलग अलग सखाओं का दायरा है ना। जैसे हमारे लाइफ में भी हम देखते हैं ना, कोई बहुत इंटीमेट है, कोई थोड़ा सा दूर है, कोई थोड़ा सा दूर है हमारे फैमिली सर्कल से, वैसी है भगवत लीलाओं में ये जो गोपिकाएं हैं और ये जो सखा है वो भी बहुत प्रिय नर्म सखा कहते हैं उनको, प्रिय नर्म सखा टेक्निक, ये सारे टेक्निकल वर्ड रूपों को स्वामी ने दिए हैं। ठीक है, जय कृष्णा। उन्होंने दीक्षा अद्वैत आचार्य से ली थी, अच्छा प्रश्न है, मंत्र दीक्षा अद्वैत आचार्य से ली थी। नार का मतलब है जल और आयन का मतलब है शयन करना, जो जल में शयन करते हैं उनको नारायण कहते हैं, या फिर जो हरे के हृदय में निवास करते हैं उनको भी नारायण, ऐसे नारायण शब्द की कई अर्थ है, चतुर्भुज विशेष रूप से नारायण वैकुंठ में निवास करते हैं। हरे कृष्ण।